आपको याद होगा पिछले पिछले दो रविवार को हमने जो विषय आरंभ किया था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो जी उठा प्रभु है। चूँकि वो जी उठा प्रभु है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। और हमने बहुत सारी बातों को देखा था, और हमने इस बात मैंने आपके साथ इस बात को शेयर करा था कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय से ही एक मिथ्या आरंभ कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा है। और हमने पहले मत्ती उसके 28 अध्याय पर उस पर विचार किया था, और तब उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के भीतर उन्होंने 12 बार अलग अलग रीति से अपने आप का दर्शन लोगों को दिया, और लोगों से उन्होंने बातें की, लोगों को संदेश दिए, निर्देश दिए, और लोगों के सामने वो स्वर पर उठा लिए गए। और उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि जैसा तुम मुझे जाते देखते हो, मैं एक दिन फिर से आऊँगा। सो हमने पहली बार जब मत्ती उसके 28 अध्याय को हमने देखा था, तो हमने पहले दो तीन घटनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बारे में था वो देखा था, और फिर उसके बाद फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से पतरस वापस चला जाता है और अपने साथ अन्य शिष्य को भी ले जाता है, लेकिन परमेश्वर की योजना में होकर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से पुनः वापस लाते हैं, और पतरस को किस प्रकार से अपनी सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन आज जो हम जिस विषय को लेकर ना चाहते हैं, आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पर जो आप लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, तीसरे प्रकार के नहीं, केवल दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जान करके पुनरुत्थान पर विश्वास किया है और पुनरुत्थान को अपनाया है, पुनरुत्थान को विश्वास किया है और पुनरुत्थान को अपने जीवन में अपनाया है, लिया है, स्वीकार किया, ग्रहण किया है। या दूसरे प्रकार के लोग हैं, सुना है, जाना है, समझा है, शायद रीति विधियों में बहुत सारी चीज़ मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपनाना चाहिए उन्होंने अपनाया नहीं है। एक समूह वो है, हमें हमारे बीच में जितने जने, दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया और अपने जीवन ले लिया। दूसरे वो हैं जिन्होंने अभी तक उसको ग्रहण नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। हाँ, सुना है, सुनते चले आ रहे हैं, शायद बचपन से सुन रहे हो, बहुत सारी पिक्चर में देखा होगा, बहुत सारी घटनाओं में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन अपने जीवन में अपनाया नहीं है। और अगर ये नहीं है, निर्णय नहीं है, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाए। और उसी बात पर आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आज का हमारा मुख्य जो विषय है, पहला ग्रंथ उसके 15 अध्याय पर, दैहिक पुनरुत्थान की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ बॉडली रिजरेक्शन। दैहिक पुनरुत्थान की निश्चितता, जो बार 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 ये देह जी उठेगी। क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी, तो उसकी, यद्यपि परमेश्वर सब कुछ का जानने वाला था, लेकिन उसकी सनातन योजना में परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया था। परमेश्वर ने उस अपनी सनातन योजना में मनुष्य को सृष्टि के समय में जीवन दिया था, और वो जीवन वो था जिस जीवन में होकर परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था, संगति रखता था। लेकिन आप जानते हैं, और मैं बार बार उत्पत्ति पहले दूसरे तीसरे अध्याय में आता हूं, बार बार, ये मेरी आदत है और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब पाप आया, तो पाप ने दो काम किए, ना केवल मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, संगति को तोड़ दिया, लेकिन मनुष्य का जो जीवन था, जो अनंत का जीवन था, वो समाप्त कर दिया पाप के कारण, और तब उसके बाद मृत्यु आ गई। मनुष्य के जीवन में पाप के कारण मृत्यु ने प्रवेश कर लिया। अब असंभव था कि मनुष्य पुनः परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाए, असंभव था कि अब मनुष्य पुनः परमेश्वर के उस अनंत जीवन में अपने प्रयास के द्वारा पहुंच जाए, और इसलिए परमेश्वर ने उस सनातन योजना में होकर, लंबा इतिहास है, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी जो पाप के कारण आई थी, और क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी और इसलिए उसने अपनी उस सृष्टि को जो उसके रूप और स्वरूप में बनाई गई थी बिगड़ गई, अब उसके लिए एक आशा उत्पन्न कर दी कि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उससे पुनः संबंध स्थापित होने के द्वारा वो भी उसी अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए इन सारी बातों को हम देखते हैं। तो जो आज हम इस स्तर पर विचार करना चाह रहे हैं, ये सच है, यीशु का पुनरुत्थान, हमने पहले मैंने देखा यीशु का पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के सुसमाचार का आधार है। पहली बात, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का पुनरुत्थान यीशु मसीह के सुसमाचार का आधार है। यदि यीशु मसीह जीना उठे थे, मैंने पहले बार बार दोहरा रहा हूं हर त्यौहार को, ये कलीसिया ना होती, मैं और आप यहां पर ना होते। दूसरी बात, यीशु का पुनरुत्थान एक मसीह विश्वास का आधार है। पहली बात सुसमाचार का आधार है, दूसरी बात विश्वास का आधार है। और जब हम इस पहले क्रंथियों में आते हैं, पहले क्रंथियों में इन 58 पद में, तो हम इन 58 पदों को हम चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं। संक्षिप्त में हम जाना चाहेंगे, पहले पद से लेकर 10 पद तक पुनरुत्थान का तथ्य है, फैक्ट ऑफ रिजरेक्शन पुनरुत्थान का तथ्य है। दूसरा 12 पद से लेकर 28 पद तक पुनरुत्थान की आशा, होप ऑफ रिजरेक्शन। तीसरा 29 पद से लेकर 49 पद तक पुनरुत्थान का धर्म विज्ञान, थियोलॉजी ऑफ रिजरेक्शन। चौथा 55 पद से लेकर 58 पद तक पुनरुत्थान की सामर्थ, पावर ऑफ रिजरेक्शन। चार चीजों को, चार भागों में हम इस पूरे 58 पदों को भाग सकते हैं। यद्यपि समय नहीं कि हम उस पर पूरे जाएं, लेकिन दो तीन मुख्य बातों को आज हम परमेश्वर के वचन में से देखना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार इस बात को देना चाह रहा हूँ, मेरे विश्वासी भाई बहनों, जितना अधिक मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित इस पुनरुत्थान पर होगा, उतना अधिक मेरी और आपकी आशा दृढ़ होगी। जितनी अधिक मेरी और आपकी आशा दृढ़ होगी, उतना अधिक मेरा और आपका विश्वास दृढ़ होगा। जितना अधिक मेरा और आपका विश्वास दृढ़ होगा, उतना अधिक इस पर संसार में मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के निकटता में बढ़ने के योग्य होगा। ये क्रम है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में पुनरुत्थान को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रभु के बलिदान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्रूस पर उसके लहू बहाया जाना जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन उसके जी उठने पर और अधिक हमें विश्वास करते हुए उसको समझना है, उसकी गहराइयों को जानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। वही तो हमारी एक आशा है। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है और इस अध्याय में पहुंच रहा है, 15 अध्याय में, तो कहता है 15 अध्याय के पहले पद में, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया। मैंने तुम्हें सुनाया, वही सुना रहा हूं, जिसको तुम्हारे बीच में मैंने प्रचार किया है, जिसको तुमने ग्रहण किया है, जिसमें तुम स्थिर हो। तुम्हारे मध्य प्रचार किया गया, हर इतवार को आपके मध्य में सुसमाचार प्रचार किया जाता है, और आप में से कुछ हैं जो सुसमाचार के प्रचार को सुनते हैं और ग्रहण करते चले आ रहे हैं। और अगर आपने ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने बाद वो कह रहे तुम उस स्थिर हो। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा तुम उद्धार प्राप्त करते हो। आगे चल के दूसरे पद में कहता है, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी तुम पाते हो। वो सुसमाचार जो तुम्हारे बीच में प्रचार किया गया, जिस सुसमाचार के द्वारा को तुमने ग्रहण किया है, इसी सुसमाचार को ग्रहण करने द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कार्य के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार तुम्हारी झूठी धार्मिकता के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने धर्म कर्म के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार अपने भले कामों और दूसरी चीजों के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारे स्वयं के प्रयास के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उस सुसमाचार के द्वारा हुआ, जिस सुसमाचार को मैंने तुम्हारे सामने प्रचार किया है, तुमने उसको सुना है, तुमने उस पर विश्वास किया है, तुमने उसको ग्रहण किया है। और तब आगे चल के कहता है इस शर्त पर कि तुम वचन को जिसको मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और अब तक तीसरे और चौथे पद में वो सुसमाचार को एक्सप्लेन करता है। और हर विश्वासी को ये तीसरे चौथे पद को याद करना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। और इन दो पदों में प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का जलाया जाना, उसके बारे में पौलुस कहता है ये सब कुछ जो हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, अर्थात पहले से पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन हो चुका था। समय नहीं कि हम उन पदों में जाएं, लेकिन अगर भजन संहिता 16 पढ़ेंगे और यशायाह 53 पढ़ेंगे तो आपको वहां स्पष्ट मालूम चलेगा कि किस प्रकार से उस पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी कर दी जा चुकी थी। ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो कुछ भी किया, और इसलिए तो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार यही पौलुस प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया कि वो मारा गया, गाड़ा गया, मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और तब उसके बाद वो बहुत लंबी सूची देता है। कैफा, मैंने पिछली बार बताया था कि पतरस के तीन नाम थे, शमौन, पतरस, कैफा, और ये कैफा शब्द यहां पर आया था। तब कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया, इसके पश्चात 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिसके अधिकांश अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। तब याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे समय का जन्मा हूं। और पिछली बार उस सूची को पढ़ते हुए मैंने कुछ बातों को इसको समझाया था कि किस प्रकार से पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखा दिया, उसने अपने आप को प्रकट किया ताकि वो लोग जो मती के अध्याय 28 पद में पैसा देकर लोगों को झुठलाना चाह रहे थे कि तुम कह देना कि उसकी लौ चुरा ली गई है, वो सब बेकार हो जाए, झुठलाई जा सके। प्रभु ने अपने जी उठने के द्वारा शैतान की सारी योजनाओं को विफल किया, जो झूठ की योजना बना रहा था यीशु मसीह के झूठे को झूठा ठहरा था वो सब कुछ। और इसी के कारण बाद में आगे चल करके हम देखते हैं दो समूह विभाजित हो गए थे। एक समूह था जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मानता था, और एक दूसरा समूह था जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं मानता था। प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय में, उसके 23 अध्याय में हम उसका वर्णन पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर भी आज उसी प्रकार के लोग हैं, यहां पर भी उसी पर, और उसी समय से चला आ रहा है, उस समय से चला आ रहा है। सो जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आज मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात को आपके सामने थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहूंगा। आपको आज के संदेश को सुनते हुए यह स्वयं व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या मैंने व्यक्तिगत रीत से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार है, उसको केवल सुना है, समझा है, जाना है, या सचमुच में मैंने उसको ग्रहण किया है। यदि नहीं ग्रहण किया, अर्थात अगर अपने पुनरुत्थान को नहीं ग्रहण किया, आपने यीशु को नहीं ग्रहण किया, आपने उसके सुसमाचार को नहीं ग्रहण किया, क्योंकि पुनरुत्थान यीशु मसीह से है। और इसलिए परमेश्वर सहायता करे कि आज आप इस सच्चे निर्णय को लेकर यहां से जा सके कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, क्योंकि आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे जी उठे, और इसलिए मैं अपने जीवन को आज आपके हाथों में सौंपती हूं। आप मेरे जीवन में प्रभुता करिए और इस पर विश्वास में मुझे दृढ़ करिए, काश ये हो सके। और यही सुसमाचार प्रचार पौलुस कर रहा था, ये उसका बोझ था, ये उसका दर्शन। मेरे आपके विश्वास के जीवन की दृढ़ता इसी वचन के आधार पर है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो सुसमाचार का आधार, फाउंडेशन ऑफ द रिजरेक्शन, foundation of gospel and foundation of our faith. इस बात को देखें, तब आगे हम बढ़ते हैं. जब इन सारी चीज़ों कह रहा है तो समय कम होने के नाते 12 पद से लेकर 19 पद तक 7 तर्क हैं. प्रश्न देखिए, तो क्यों कहते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं? तब आगे चलकर कहता है, यदि मरों का पुनरुत्थान नहीं है तो पहली बात, तो मसीह जिलाया नहीं गया. पहली चीज, यदि तुम कहते हो कि पुनरुत्थान ऐसा नहीं, तो मसीह नहीं जिलाया गया. सबने देखा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि उसने पहले अपने वचन में स्वयं कहा था, पर पवित्र शास्त्र में कहा गया था, और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भी बार बार किया, अवश्य मनुष्य का पुत्र पकड़वा लोगों के हाथों में पकड़वाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, लेकिन तीसरे दिन वो झूठे. बार बार उसने सेवा का काल के समय में इस बात को कहा था, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये मिथ्या थी, फिर लोगों को भरमाया जा रहा था, फिर भी लोगों को बहकाया जा रहा था. आज भी स्थिति है. कितने लोग शायद जन्म से अपने आप को मसीह कहते हैं, साई कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी रीति विधियों को करा, लेकिन उनके बाद ये निश्चितता नहीं है, उनके पास ये निश्चितता नहीं है. मसीह परिवार में जन्म लेने से निश्चितता नहीं होती, या उन रीति विधियों को पूरा करने से निश्चितता नहीं होती. ये व्यक्तिगत संबंध के द्वारा जो पाप से क्षमा को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से स्वीकार करना है, उसके द्वारा आती है. तो पहली चीज वो कह रहा है, अगर ऐसा है तो मसीह भी नहीं जलाया गया. दूसरी बात, अगर मसीह नहीं जलाया गया तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है. फिर क्यों हम प्रचार कर रहे हैं? कब से? यीशु मसीह जी उठा, और जी उठने के साथ साथ प्रचार आरंभ हुआ. सबसे पहला प्रचार क्या था? सबसे पहला प्रचार था, देखो यीशु जी उठा है, देखो यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा, हमने उसको देखा है, यीशु जी उठा है. सबसे पहला प्रचार का जो शब्द था वो ये था, देखो यीशु जी उठा है, हमने उसे देखा है. ये सबसे पहला काम, और एक के बाद एक कई गवाही थी. और इसलिए पौलुस कहता है, अगर ये सब कुछ है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है. तो क्या जो ये प्रचार कर रहे हमने यीशु को देखा है जी उठे, वो क्या झूठे हैं? पर वो झूठे नहीं है. तीसरी बात कहता है, न केवल हमारा प्रचार करते हैं, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है. तब फिर हम अपने आप को विश्वासी क्यों कहते हैं? तब फिर हम क्यों कहते हैं सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लो? अब प्रचार व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ है, तो इसी रीति से सब कुछ व्यर्थ है. मेरे प्रियो, तब चौथी बात कहता है, इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे. हम क्या कर रहे हैं? हम झूठी गवाही दे रहे हैं, ओ देखो यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है. क्यों इतने गीत गा रहे हैं यीशु जी उठा है? पौलुस कहता है कि अगर यह ऐसा है तो इसका मतलब ये सब कुछ झूठ है, पर ऐसा नहीं है. पौलुस उनको कुरिन्थी की कलीसिया को लिखते हुए, उन विश्वासियों को लिखते हुए, और आज मुझे और आपको सिखाते हुए ये कहना चाह रहा है, ये जो कुछ बातें कही जा रही हैं ये सब बेकार हैं. वास्तव यह है कि यीशु मसीह जी उठा है, और तभी वो आगे चल करके वो लॉन्ग बहुत लंबी सूची देता है कि उसने उसको देखा, उससे उसने बातें की. और जब मैं पहले दिन में गलील के बारे में बता रहा था, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था अपने मरने से पहले कि मैं गलील में तुमसे मिलूंगा और वहां पर आना. ना केवल गलील में यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, लेकिन उसके जी उठने के बाद स्वर्गदूतों ने इस बात को कहा कि तुम गलील में जाना, क्योंकि तुमसे पहले वो गलील में चला जाएगा, क्योंकि उसने पहले से कह दिया गया था. और हम उस बात को पहले दिन देख चुके थे कि गलील में क्यों उसने भेजा था अपने शिष्यों को मिलने के लिए. तब आगे चल के वो कहता है, तो हम झूठे गवाह ठहरे. क्या हम झूठे गवाह हैं? नहीं, हमने यीशु के जीवन को जाना है. तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है. तब कह रहा, अब तक तुम पापों में पड़े हो. तब हम क्यों कह सकते हैं कि हमें उद्धार मिल गया, हमारे पापों की क्षमा हो गई, प्रभु ने हमें अपने संतान बना लिया, प्रभु ने अपने राज में शामिल कर दिया? सब क्यों कहते हो? अगर यीशु जी न उठा हो तो ये सब कुछ बेकार है, और मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि यीशु मसीह के जी उठने की सबसे बड़ी साक्षी है कि आज कलीसिया जो संसार में विश्वव्यापी और स्थानीय कलीसिया है, सब कुछ हो जाएगा, सरकार आएंगी चली जाएंगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, शासक आएंगे, सब कुछ परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन सुसमाचार के कार्य को कोई भी नहीं रोकने पाए, क्योंकि प्रेरित काम उसके 5 अध्याय में ये स्पष्ट कहा है कि यदि परमेश्वर का कार्य है तो कोई मनुष्य उसको रोकने नहीं पाएगा। मनुष्य का कार्य तो रुक जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कार्य उसको कोई रुकने नहीं पाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखना है, कह रहा है कि अभी भी हम पापों में पड़े और हम नाश हो गए। अगर पापों में पड़े तो नाश तो है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह मारा ना गया होता, अगर गाड़ा ना गया होता और जी ना उठा, तो हमारी दशा वही दशा रहती, तो अदन की वाटिका में पाप के कारण गिरने के कारण हो गई, ना केवल परमेश्वर से अलग हो गए थे, लेकिन मृत्यु आ गई थी और मृत्यु के कारण विनाश हमारे पर छा गया था। परंतु उसी दंड से बचाने को, उसी पाप के शाप से प्रभु को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ना केवल मारा जाना पड़ा, यीशु मसीह जन्म लेते, यीशु मसीह मारे जाते, यीशु मसीह गाड़े जाते। अगर यीशु मसीह जी ना उठे होते मेरे प्रियो, बलवान कौन होता? मृत्यु बलवान होती है। इसीलिए पौलुस इस अध्याय के अंतिम में लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने आप को मृत्यु से अधिक सामर्थ्य, शक्तिशाली और प्रभुता करने वाला दर्शा दिया। कहता है हम नाश हो गए होते हैं, और तब जैसे भैया ने भी बोला था, कह रहा हमारी दशा क्या होती? सब मनुष्य से अधिक दयनीय होती है। हम अब आगे होते हैं, हमारे पास हम आशा रहित नहीं, हमारे पास कोई आशा नहीं होती, ऐसा हमारा जीवन होता यह है। तो इन बात कहता है कि तब हमारी था, तो ये सात चीजें, पहली चीज तो हम मसीह भी नहीं जलाया था, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, हम झूठे ठहरते, हम पापों की हमें क्षमा नहीं प्राप्त होती, हम सब के सब नाश हो गए होते, और हम औरों से भी हमारी दशा दयनीय होती। और जब ये सात बातें कहता है तो आगे चल करके वो 4 चेतावनी देता है जो मुझे और आपको इस पुनरुत्थान से संबंध में सावधानी के साथ ध्यान देना है। वो सारी बातों को कहते हैं 29 पद से लेकर 20 पद से 28 पद तक, तो बहुत सारी चीजों और वर्णन करता है, लेकिन 20 से 28 पद में एक चीज को मैं जानना चाहूंगा। जब हम जीसस ओनली लोगों के साथ सामने बात करते हैं और वो घूम फिर करके यीशु 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 पर आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि यहां पर 26, 27 पद, 28 पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जो मुझे और आपको याद रखने चाहिए। जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में ज्ञान में बढ़ाएं और बाइबल के कुछ पदों को याद करना चाहिए, और ताकि जब कोई हमसे बात करता है तो हम उसको सही उत्तर दे सके। और यहां पर वो क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रभु इसके कारा साफ साफ कार्य खत्म किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी है सारी चीज हो गई। 26 पद पढ़ रहा हूं, सबसे अंतिम शत्रु जिसका अंत किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर लिया है। अभी एक और समय आएगा, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ अधीन कर दिया गया, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो स्वयं अलग रहा। जिसने, किसने? परमेश्वर ने। किसके? उसके अधीन पुत्र के। वो स्वयं कौन? परमेश्वर। कुछ समय के लिए अलग रहा, पर जब सब अधीन हो जाएगा, जब सब अधीन हो जाएगा तो पुत्र, तो पुत्र स्वयं उसके, इसके पिता के अधीन हो जाएगा, जिसने अर्थात किसने? पिता ने सब कुछ उसके पुत्र के अधीन कर दिया, जिससे कि परमेश्वर पिता ही सब कुछ हो। जो जीसस ओनली वाले हैं वो परमेश्वर को स्थान नहीं देते, तो कहते पुत्र ही सब कुछ है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पर यह रेफरेंस ऐसा पद है जहां स्पष्ट रूप से यह है कि एक समय आएगा, क्योंकि पुत्र अपने पिता के दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने कार्य किया, सिंहासन पर विराजमान है, फिर से उसका भी हम आगे चल के देखेंगे, वो आएगा और जब जब न्याय हो जाएगा, परमेश्वर की सनातन योजना पूरी हो जाएगी, तब फिर पुत्र पिता की अधीनता में हो जाएगा, परमेश्वर पूरा राज करेगा। तब यहां पर देखना है, तब भी 29 पद से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो 34 पद तक चार चेतावनियां हैं जो मेरे और आपके लिए। पहली बात, यदि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, यदि जीता है, तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, गलत शिक्षा से सावधान रहना है। पहली बात, गलत शिक्षा से, 32 पद, यदि मैं इफिसस में वन पशु से लड़ा तो मानवीय भाव से मुझे कुछ क्या लाभ? यदि मृतक जलाए नहीं जाते तो खाओ पियो, खाओ सो आओ खाएं और पिए, क्योंकि कल तो मरना ही है। अगर यीशु मसीह नहीं जी लौटा तो हमारा जीवन ये होता, लेकिन अगर यीशु मसीह जी उठा है तो मुझे और आपको सावधान रहना है। कौन सी सावधान? ये झूठी शिक्षा, अरे ये दुनिया में हमें केवल मौज मस्ती करनी है, खाना पीना है, अपना जीवन काटना है और कल तो हमें चले आना है, ये झूठी शिक्षा है। अब मुझे और आपको इससे सावधान रहना है। पहली बात, झूठी शिक्षा से सावधान रहिए। दूसरी बात, 33 पद में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। बुरी संगति से सावधान। पहली बात, बुरी शिक्षा से, गलत शिक्षा से सावधान। दूसरी बात, बुरी संगति से सावधान। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने विश्वास कर लिया है और विश्वास करने के बाद मेरा मित्र है, मेरा कोई संबंधी है, मेरा कोई रिश्तेदार है, अगर वो है, मुझे उसको प्रभु में लाना है, ठीक है, वो नशा करता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, पत्नी मारता है, पत्नी से झगड़ता है, जो कुछ है, गाली देता कुछ, मैं उसको धीरे धीरे करके सुसमाचार सुनाऊंगा उसके साथ, और तब मैं करता, अच्छा है सुसमाचार सुनाना, अच्छा है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप उसके साथ निरंतर बने रहेंगे तो आप, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति भले चरित्र को बिगाड़ देती है। यह सावधान रहना है। और कई बार लोग धीरे 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 करके दूसरे को जीत के लाने, एक जवान लड़के बेटी बेटी हैं, प्रेमी प्रेमी प्रेम हो गया, लड़की ने लड़के से, बाद में लड़के ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब उसको तो परमेश्वर के साथ चलना है। अब उसको समझाया जाए, बेटा तुम प्रभु में हो, अब प्रभु के साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये संगति ये जीवन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। नहीं अंकल जी, अगर मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा तो वो नाश हो जाएगी, प्रभु ने मुझे बचाया है, अब मैं इसलिए उससे शादी करना चाहता हूं या मैं उसलिए शादी करना चाहती हूं कि मैं उसको बचा लूं, और मैं उसको बचा लूंगा, मैं उसको बचा लूंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बचाना तो गया दूर, खुद डूब गए। ये सावधान होने की बात है, ये सावधान होने की बात है। जवान बच्चों, बेटे बेटियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, जो माता पिता हैं जिनको कल अपने बच्चों के विवाह के लिए जिम्मेदारी को पूरा करना है, उनको भी सोचने की बात है, उनको भी सचेत होने की बात है कि अपने बेटे बेटी का विवाह अन्य जाति से मत कराइए, कि हम किसी रीति उसको जीत लेंगे। और लड़का मेरा विश्वासी है, वो लड़की को विश्वासी बना लेगा, लड़का मनुष्य का काम किसी को विश्वासी बनाना नहीं है, वो परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के आत्मा का काम है। और कई बार इस भ्रम में कई परिवार नाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और इसीलिए पुरुत्थान की जब संदेश दे रहा है तो पुरुत्थान के संदेश देते हुए कह रहा है गलत शिक्षाओं से सावधान रहना है, गलत संगति से सावधान रहना है, ये चेतावनी है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु का, ये हमारी कलीसिया के लिए एक बहुत आनंद की बात है कि जवान हमारे बेटे बेटी बहुत इस कलीसिया में, और उनके सामने एक चुनौती है, आसमान जुए में ना जीतो। धार्मिकता का आधाविकता से क्या मेल, परमेश्वर का बालियाल से क्या नाता? यह चेतावनी है, ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन इस मित्रता के बारे में क्या कहता है। और इसीलिए वो ये कहता है कि सावधान रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तीसरी बात कहता है, पाप के प्रति सावधान रहो। धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ और पाप ना करो, पाप के प्रति सावधान रहो। पहली चेतावनी, गलत शिक्षा से सावधान। दूसरी चेतावनी, बुरी संगति से सावधान। तीसरी चेतावनी, पाप के प्रति सावधान। मेरे प्रियो, छोटा छोटा पाप, इसीलिए श्रेष्ठ गीत में उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 15-16 पद में, जो छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उनको पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में फूल लगे हुए हैं। क्या कहना चाह रहा है वो श्रेष्ठ गीत? जब दाग लगती है अंगूर, तो खास से अगर आप क्या नाम से बॉम्बे की तरफ जाएंगे, नासिक तरफ जाएंगे, तो आपको बहुत ट्रेन में जाते हुए पूरे बहुत ऐसे खेत मिलेंगे और उनको चारों तरफ से बांधा जाता है, और इस तरह से बांधा जाता है कि उसमें कोई भी लोमड़ी या कोई भी चीज उसके अंदर ना घुस जाए। और क्या होता है, जब इसमें फल आने लगते हैं तो उससे पहले सफेद सफेद फूल लगते हैं, और ये जाके अंदर घुसते हैं और उन फूलों को तोड़ डालते हैं। जब फूल टूट जाते हैं तो फिर फल नहीं लगने पाते। ये आरंभ का समय है। और इसी तरह से मेरे और आपके जीवन के लिए चेतावनी है कि जो छोटी छोटी पाप रूपी आदतें हैं, स्वभाव हैं, उनके प्रति मुझे और आपको सावधान रहना है। धोखा है, छल है, झूठ है, चोरी है, लालच है, ये चीजें जो छोटे सी चीजें में हमें समझौते के जीवन में डाल देती हैं, पाप के प्रति सावधान है। और मुझे और आपको परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, मांगना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र पर बढ़ जाएं, चाहे मैं इस एज में आ गए, मुझे भी आवश्यकता है, और मैं रोज करता हूं, प्रभु सावधान रहिए, कोई छोटा सा पाप, कोई छोटी सी आदत, कोई छोटा सा लालच, कोई छोटा सा झूठ, कोई छोटा सा झूठ। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। और तब उसके बाद नीति वचन आगे चल के कहता है कि धर्मी जन झूठ से घृणा करता है। क्या मतलब हुआ कि जब एक व्यक्ति धर्मी बन गया तो उस धर्मी के अंदर वो परमेश्वर को जो धार्मिकता का स्वभाव है, जो झूठ से घृणा का स्वभाव है, वो उसके अंदर आने लगता है और बढ़ने लगता है। झूठी एप्लीकेशन, बीमार नहीं है, बीमारी का एप्लीकेशन दे दिया, कितनी बार होता है? झूठा बिल, खर्चा 5 रुपए करा, 1 आर आगे बढ़ा दिया, 15 रुपए हो गया, कितना अधिक। सावधान रहना हमें छोटी छोटी बातें। मेरे प्रियो, हम सब ऐसी जगह में, चाहे संस्था में काम कर रहे हो, चाहे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे किसी स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे किसी जगह में भी कहीं भी हो, हमें प्रतिदिन छोटे छोटे पाप का सामना करना पड़ता है। बड़े पाप तो दिखाई दे जाते हैं, उनके प्रति तो हम सचेत हो जाते हैं, लेकिन कई बार परिवार में छोटी छोटी चीज, बच्चे माता पिता से छोटा छोटा झूठ बोल करके, छोटी छोटी बातें छिपा के क्या करते हैं, धीरे 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 वही इकट्ठा होता है। सावधान होना है, सावधान रहना है, सावधान होना है। और यहां पर कहता है पाप से सावधान हो, 34 पद में, तो वो आगे कहता है, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते। मैं कहता हूं यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। परमेश्वर को जानने के प्रति सावधान होना है। अगर परमेश्वर को आप नहीं जानने के लिए तैयार हैं, नहीं स्वीकार करने तैयार हैं, नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो यह लज्जा की बात है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप परमेश्वर के उद्धार का तिरस्कार नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के वचन को पांव के तले नहीं रोन सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। यहां पर वो कहना चाह रहा है कि तुम पुरुत्थान पर विश्वास करो, अगर तुम्हें विश्वास करने से कोई रोकता है, तुम्हारे अंदर संदेह आता है, तुम्हारे अंदर प्रश्न आता है, तुम्हारे पर और कुछ होता है, तुम डगमगाते हो, तो ये तुम्हारे लिए लज्जा की बात होगी, क्योंकि तुमने धार्मिकता के सुसमाचार पर, धार्मिकता के कार्य पर विश्वास नहीं किया है। संदेह एक लज्जा का पाप है। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान की सच्चाई को जानना है। प्रश्न यह है, आज मेरा और आपका विवेक क्या कहता है? क्या सचमुच में अगर आप पाप में हैं, कब तक आप पाप से खेलते रहेंगे? आपका विवेक आपको काटता है, क्यों नहीं प्रभु के सामने आके माफी मांग लेते, क्षमा मांग लेते? क्यों नहीं प्रभु के सामने आप रो लेते? क्यों नहीं प्रभु के सामने आकर के, प्रभु के लोगों के सामने आकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते? कब तक उस लज्जा में जीवन आप व्यतीत करेंगे? आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं। सावधान। तो चार चेतावनी है जो पुनरुत्थान के साथ जुड़ी हुई है। मुझे और आपको सावधान होना है, गलत शिक्षा से सावधान होना है, बुरी संगति से सावधान होना है, पाप के प्रति सावधान होना है, परमेश्वर को ना जानने के प्रति सावधान होना है, अर्थात परमेश्वर का इनकार करने के प्रति सावधान होना है, क्योंकि एक दिन उसके सामने मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा। तब आगे चल करके 50 से 58 पद में मैं बीच का छोड़ूंगा। बीच में बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है, जो धार्मिक, जो मैंने कहा धर्म विज्ञान संबंधित है, कई चित्रण हैं जो परमेश्वर दे रहा है, कई तरह से समझाना चाह रहा है किस प्रकार से वो बीज के बारे में, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, उनके जीवन के और मरण के बारे में समझाते हैं, समझाना चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी रीति से, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करेंगे। पर 50 पद में क्या है? हे भाइयो, अब ये कैसे पुनरुत्थान होगा? ये सारी घटना का वर्णन कर रहा, बहुत सुंदर दिनों का। हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू के, लहू परमेश्वर के राज में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। क्या मतलब है मांस और लहू? मांस मुझ में भी है और आप में भी है, लहू मुझ में भी और आप में भी है, क्या मतलब है? जब तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन को ना जिला दे, ना जीवन दे दे, तो मेरा जीवन उसी पाप में केवल मांस और लहू का ही है। लहू प्राण प्रदान करता है, मांस शरीर तो देता है, और प्राण और लहू के अंदर अंदर है, देह के अंदर अंदर है, और जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। जब तक पवित्र आत्मा का काम, उस वचन का काम मेरे और आपके जीवन में, मन में, हृदय में, मस्तिष्क में नहीं होता, क्योंकि आत्मा जीवन प्रदान करता है, आत्मा नया जन्म प्रदान करता है, जब तक वो ना हो, जब तक नया जन्म ना मिले, परमेश्वर के राज में प्रवेश हम ना करें, तब तक हमारा जीवन क्या है? कहता है वो परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ना विनाश, अविनाशी का अधिकार होता है। कैसे मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता हूं? इसीलिए तो वो आया था प्रभु के पास पूछने के लिए, निकोदेमस। जब एक व्यक्ति बड़ा हो गया तो कैसे परमेश्वर, तो कैसे, क्या माता के घर में जाकर जन्म ले? नहीं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और इसीलिए योना उसके पहले अध्याय में 12-13 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, ना वे शरीर से, ना वे लहू से, ना वे मनुष्य से, ना मनुष्य की इच्छा से। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, वे ना शरीर से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वही चीज यहां पर वो कह रहा है, यही चीज वो यहां पर कह रहा है। मेरे प्रियो, तब आगे जब कहता है ना विनाश, विनाश का अधिकारी होता है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात कहता हूं। यह पुनरुत्थान क्या एक रहस्य है? ये वेद की बात है, हम कई बार हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के आत्मा का कार्य वो उस प्रकार से है कि हम आत्मा किधर से, हवा किस प्रकार से चलती है, किधर से आती है, किधर जाती है, हम नहीं जानते, लेकिन उस कार्य के प्रभाव को जानते हैं। हवा के प्रभाव को जानते हैं, हवा की शक्ति को जानते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के द्वारा जो नया जन्म का कार्य है, आत्मा कार्य है, उसके प्रभाव के द्वारा हम जानते हैं। वो आत्मा हमारे जीवन में काम करके हमें परिवर्तित करता है, हमें अपनी संतान बनाता है, हमें अपने राज में शामिल करता है, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, हमारे अंदर आशा उत्पन्न करता है। वो परमेश्वर के आत्मा काम है। हम नहीं समझ में आता कैसे हुआ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कार्य है। कह रहा देखो, एक रहस्य की बात, पुनरुत्थान एक रहस्य की बात है। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। अद्भुत है। कैसे होगा ये? एक क्षण पलक मारते। इसीलिए थिस्सलुनी में पौलुस थिस्सलुनी की पत्री में हर अध्याय में, पांचों अध्याय में एक या दो पद पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जरूर वर्णन करता है और उन घटनाओं का वर्णन करता है। एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरी बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरी बस जगी, मृतक अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सुन लीजिए, दो शब्द हैं, दोनों शब्द पर विचार करना है। वो क्या कह रहा है? मृतक अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे। मृतक, सब मृतक, जितने लोग मरे हैं सब जलाए जाएंगे। लेकिन कौन क्या होगा? पर क्या लिखा हुआ है? हम बदल जाएंगे। कौन बदल जाएगा? जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने सुसमाचार को जाना है, जिन्होंने पुनरुत्थान पर विश्वास किया, वो बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे, सब नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्याय सबका करेगा। लेकिन कहता है बदल जाएंगे, क्योंकि इस नाशमान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है, परंतु ये सब नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो ये लिखा हुआ वचन पूरा होगा। क्या वचन पूरा होगा? मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। सबसे पहले मृत्यु को निगलने वाला प्रभु यीशु मसीह था। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। पहला आदम पाप को लाया, दंड को लाया, लेकिन दूसरा आदम जीवन को लाया, जीवन को लाया। कितना अद्भुत है हमारा यीशु मसीह। कह रहा है ये सब कुछ तब, तो उस पुनरुत्थान में यीशु जी उठा, इस पुनरुत्थान में तब विश्वासियों के द्वारा, जब विश्वासी जी उठ जाएंगे, क्योंकि शैतान की योजना तो ये थी कि हम अनंत काल तक के लिए कहां समा जाएं, मृतक होकर अनंत काल की मृत्यु में समा जाएं, फिर हमें जब पास कोई जीवन ना मिले। इसीलिए बाइबल इस बात का उत्तर देती है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हाँ, मृत्यु के जीवन है, वो जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तब आगे चल के कहता है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? एक चुनौती पूर्ण। मृत्यु का डंक तो पाप है, मृत्यु का डंक तो पाप है जो उत्पत्ति से आरंभ हुआ, लेकिन पाप की शक्ति व्यवस्था है। व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ हम सीख रहे हैं दिनों में, रोमियो में भैया ले रहे हैं बाइबल स्टडी में। और तब कहता है परंतु ये है, पाप, मृत्यु, व्यवस्था, ये सब कुछ है, लेकिन इस जीवन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा विजय करता है। कैसे विजय करता है? क्योंकि वो मृतकों में से जिला देता है। ये विजय है, ना केवल यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसके विश्वासी लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे। ये एक धन्य आशा है। ये आशा संसार में किसी के पास नहीं होती। लोगों के पास करोड़ धन में होता है, दुनिया भर की चीज होती है, सब कुछ होता है, अंबानी और नानी जितने भी जो लोग हैं इनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन ये आशा नहीं है एक साधारण विश्वासी पास। शायद आपके पास, आप कठिनाई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, छोटे घर में रह रहे हैं, मुसीबत से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, रोज संघर्ष करना पड़ता है रोटी के लिए, रोज संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन आएगा जब आप उनसे कहीं बढ़कर धन्यवान बनेंगे। वो मृत्यु तो मृत्यु में अनंत काल रहेंगे, लेकिन जो जीवन का स्वाद आप चखेंगे, मैं और आप चखेंगे, वो उनके पास नहीं होगा, वो अभागे हैं। मेरे प्रियो, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। कह रहा है तब उसके बाद अंतिम बात, वो क्या कहता है 58 पद में? मेरे और आपके लिए प्रोत्साहन की बात कहता है। यीशु में पहली बात सच्ची विजय है, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो। कह रहा है इसलिए मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। तुम्हारी नेव हिलने ना पाए, वो विश्वास की है नेव। किसी भी परिस्थिति में चाहे सतावनी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे घटी हो, चाहे कमी हो, चाहे अभाव हो, चाहे कुछ भी हो, वो विश्वास के नेव डगमगाने ना पाए। अटल रहो, दृढ़ रहो, इस बात कहता है। और तब कहता है प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते चले जाओ। केवल संडे की आराधना में आने के लिए नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं आप सबका कि आप आराधना में आते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते भर आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की सुधि लेते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रेम के साथ बात करते हैं, वचन बांटते हैं। आपके ध्यान में केवल एक चीज रहती है, कैसे मैं उस पुरुत्थान के संदेश को किसी ना किसी से किसी तरह से किसी दूसरे तक पहुंचा दूं। हमें उसमें पागल बने रहना, दीवाने बने रहना, यही हमारा है, यही हमारा। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, यहां से निकले ठोकर खाए गिर जाए, हार्ट अटैक हो जाए चले जाए, नहीं मालूम। कितने लोग के बारे में हम सुनते हैं, पर मेरे प्रियो क्या हम कभी पूछते हैं प्रभु से, प्रभु जी आज कौन सा काम आपने मेरे लिए रखा है कि मैं आपके लिए कर सकूं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे साथ कीजिए, मेरा ये करिए, मेरे वो करिए, ऐसे करिए, ऐसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है इस तरह से प्रार्थना करना, लेकिन क्या हम प्रभु से वो बातें पूछते हैं कि प्रभु आज आप मुझे बताइए कैसे मैं इस दिन को व्यतीत कर सकूं, कैसे मैं आपका कार्य कर सकूं, किस रीति से। कह रहा है प्रभु के कार्य में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारे कुछ भाई इस कलीसिया में जिनको प्रभु ने एक वरदान दिए हुए हैं, चाहे व्हाइट वॉशिंग का वरदान हो, चाहे बिजली का काम करने का वरदान हो, चाहे प्रैक्टिकल बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर वो जाके अपने यहाँ पर कार्य करते हैं तो उनको आनंद के साथ आनंदित होना है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ये उनके लिए एक सौभाग्य है, उनके लिए आकाशिश की बात है, उनके लिए एक आनंद की बात है कि परमेश्वर के घर में रहकर अपने आप को लगा सके किसी काम के लिए। बहनों के लिए बहुत सारे कार्य हैं। मैं भी पिछले दिन में किसी बहन से कुछ कह रहा था कि बहन यहाँ पर मुझे आपसे कुछ काम करना लेना है। बहन ने कहा ठीक है आप मुझे बताइएगा, मेरे दिमाग में है कुछ चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ, ज़रूर बहुत सारे काम। कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, परिवार में, परिवार के लोगों में, आस पड़ोस में, संबंधियों में, ऑफिस में, सहपाठियों के साथ में, लोगों के सामने परमेश्वर प्रतिदिन बहुत सारे कार्य रखता है, कार्य रखता है। कई बार छोटे छोटे के भी काम होते हैं मेरे प्रिय, हम नहीं समझते, लेकिन प्रभु से हमें जागृत होता है। पर प्रभु ने मुझे और आपको ऐसे उद्धार नहीं दिया, प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए उद्धार दिया है कि उस जीवन को पा करके हम न केवल जीवन का स्वयं आनंद उठाएं, लेकिन इस जीवन को दूसरों के साथ बांट सके, उस जीवन को दूसरों के साथ बांट सके, वो दूसरों के लिए आशीष और आनंद का कारण बन सके, दूसरों के लिए विलाप का कारण बन सके। केवल इस बात में ओ प्रभु आपका स्तुति हो, अब आपने मैंने आपके प्रस्थान पर विश्वास किया, मैं भी एक दिन जिलाया जाऊंगा, सब कुछ होगा। लेकिन प्रभु ने यह भी तो कहा है कि तुम दृढ़ रहो, स्थिर रहो और प्रभु के कार्य में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। प्रश्न यह है हम कितना अधिक प्रभु के कार्य को करने पा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद उन जवान बच्चों के लिए जो चुनाव कर रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। और मैं कहता हूँ हमेशा यौना उसके 12 अध्याय के 24-25-26 पद को हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, यौना 12-24-25-26 बहुत अच्छा स्थल है वो एक सेवा में आने वालों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ केवल क्या उन्हीं की सेवा है, बाकी हम काय के लिए, बाकी हम काय के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब उन जवान बच्चों को कुछ देखता हूँ मैं जो बीच में आ जाते हैं, कहीं हॉल साफ करा रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं इधर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती देख करके। जीवन परमेश्वर का, हमारा जो जीवन है हमारे अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए। सो पुनरुत्थान की शक्ति, ये सामर्थ्य प्रदान की, हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन प्रतिदिन होकर के उसमें चलते चले जाते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान की दृढ़ता प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा और उसके जूटने के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर पुनरुत्थान की निश्चितता का होना अनिवार्य है। और इसीलिए पौलुस इस कुरिन्थी की कलीसिया को लिखते हुए इन विस्तार के साथ इस बात को समझा रहा है। काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा प्रभु है। 3 संडे से लगातार मैं उस पुनरुत्थान के बारे में आपके साथ वचन पाठ रहा हूं और यही इच्छा है कि काश परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में केवल उद्धार तक हम शाम ना रहे, लेकिन हमारे कार्य में, हमारे जीवन में जरूर शैतान हमें निराश करता है, हताश करता है, परेशान करता है, उदास करता है, संघर्ष है, लेकिन पुनरुत्थान की आशा में होकर हम सामर्थ्य के साथ जो प्रभु ने हमें दिया हम उसमें आगे बढ़ते जाए और उस निश्चयता को कोई ना छीन नहीं पाए। यही परमेश्वर का वचन कहता है, यही दृढ़ता है, यही दृढ़ता है। प्रश्न यह है कि आपने अपने जीवन में पुनरुत्थान को कैसा जाना है, कैसा समझा है, कैसा अपनाया है।